Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सब रोगों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। हंसी, वैसे तो हम इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। इसी वजह से हम पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं या फिर रिश्तों को ठीक करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कोई भी रिश्ते वो हील हो जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच
डॉक्टर साहब। हमारी जो श्रृंखला चल रही है रिलेशनशिप पर, उससे आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि रिश्तों में मिठास जो कहीं ना कहीं खो सी गई है, उस मिठास को फिर से भरने के लिए आपकी क्या राय है?
देखिए, सबसे पहले तो इंटेंशन होनी चाहिए उसको ठीक करने की।
जी,
कई बार हम कंडीशनली ठीक चाहते हैं, जब मुझे किसी से ज़रूरत हो तो ठीक रहे, बाकी टाइम उसमें मैं समय देना नहीं चाहता, और चीज़ें बहुत हैं मुझे।
ट्रू।
दूसरी एक चीज़ कई बार आ जाती है कि हम अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर रहे होते, और रिश्तों में जितनी ज़रूरत है उस कारण से दे नहीं पाते।
करेक्ट।
अगर मेरे जीवन में कई तरह के और दुख दर्द चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो मुझे रिश्तों में इन्वेस्ट करना बहुत छोटी चीज़ लगती है। लेकिन समझने की बात वहाँ पर जो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी उस वजह से जो एनर्जीज और समय वेस्ट हो रहा है वो बेहतर हो सकता है। नंबर टू, क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं इसलिए आप जिंदगी को उतना सीरियस नहीं लेंगे। नहीं तो खराब रिश्तों का चश्मा जो चढ़ा होता है उस वजह से आपको हर रिश्ता खराब दिखता है।
करेक्ट।
हर स्थिति गंभीर दिखाई देती है। और आप जब अभी लाफ्टर की बात कर रहे थे, लाइट वही व्यक्ति रह सकता है जिसके बोझ कम हो।
करेक्ट।
अगर आप गुब्बारे को भी रस्सी से बांधे रखेंगे तो वो जमीन पर ही रहेगा, जब वो कटेंगे तो ऊपर जाएगा ना। तो हमें क्या क्या चीजें मुझे बोझिल कर रही हैं जिसको मुझे लाइट करने की जरूरत है, ताकि मैं अंदर भी लाइट महसूस करूं और फिर वही लाइट दूसरों को दे पाऊं। ये रोज देखने की जरूरत है, रोज में भी कई बार देखने की जरूरत है, क्योंकि मन की स्थिति जो है वो टामाडोल होती रहती है, बदलती रहती है समय के साथ। सिर्फ एक दो चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है कि कई बार लोगों की बचपन से ही जो जीवन की शुरुआत रही है या जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है वो बहुत ही मुश्किलातों से कई बार गुजरी होती है।
बिल्कुल।
और वो व्यक्ति खुद भी और दूसरे भी उसको जस्टिफाई करते हैं कि तुम्हारे साथ तो हुआ ही बहुत ऐसा है, तो आखिर आप उससे कैसे उभर सकते हो। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आज से एक क्षण पहले था वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, निकल चुका है। आई कैन नॉट लिव इन द प्रीवियस सेकेंड, दैट सेकेंड इज नो मोर। मेरी माइंड के ऊपर उसकी छाप चाहे जितनी भी अमिट हो, अब वो चीज फिर से रिपीट नहीं होनी है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इट सेज यू कैन नेवर स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक ही नदी में दो बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप दूसरी बार पैर रखेंगे
पानी बदल चुका
है, पानी भी बदल चुका है, आप भी बदल चुके हैं।
Okay.
आपको भी पता लग गया है कि पानी ठंडा या गर्म है या फिसलन है उसके नीचे, तो
True.
आप उस एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं। लेकिन अगर उसी एक्सपीरियंस पे रह जाएंगे तो फिर दूसरी बार पैर नहीं डालेंगे। सो लेटिंग गो एक बहुत बड़ा सबक है जो हम सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें मुझे पहरानी बोझल कर रही हैं वही फिर मेरा फ्यूचर क्रिएट करती। मेरा पास्ट अभी प्रेजेंट है और प्रेजेंट में जिन बोझों को लेके चल रहा हूँ वही मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रहा हूँ।
मेरे एक्चुअली रोंटे खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात इतनी खूबसूरत आपने कही कि कोई भी चीज़ को हम इतना टाइटली पकड़ कर रखते हैं और फिर उसे छोड़ने के लिए कितने भी कोशिश करते हैं वो छूटता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हम पीछे की तरफ ही रह जाते हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिचुएशन में अपने आप को उस चीज़ से कम्प्लीटली बाहर निकालने के लिए आपकी क्या राय है?
देखिए, हमारे थॉट्स हमें नहीं पकड़ते, हम थॉट्स को पकड़ते हैं।
ओके।
हमारे थॉट्स इमोशंस क्रिएट करते हैं और हम इमोशंस में फंस जाते हैं। सो एक्चुअली व्हेन यू रियलाइज कि ये जो एक क्रम है, एक्चुअली थॉट से भी पहले की एक मन की स्थिति है जिसे हम वृत्ति कहते हैं, इंटेंशन,
वृत्ति।
ओके। इंटेंशन, कहीं ना कहीं मेरे मनस्पटल पे एक थॉट आने से पहले वो चीज करने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर थॉट आता है कि मुझे अब ये करना है,
चाहे वो उदास होना भी।
उदास होना एक डिफॉल्ट मोड है कंप्यूटर का।
ओके।
स्क्रीन सेवर जैसे होते हैं कंप्यूटर में, ज्यादा ना चलाएं तो वो स्क्रीन सेवर आ जाता है।
करेक्ट।
तो पहले कई बार हम उदास हुए तो जब हम अपने पे ध्यान नहीं देते उससे बाहर निकलने का, तो वो उदासी का स्क्रीन सेवर आ जाता है।
कई बार वो रिलेशनशिप्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं उनके बारे में सोचते ही हम उदास हो जाते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक स्क्रीन सेवर के समान है?
हमने उसे अपना स्क्रीन सेवर बना लिया। एक्चुअली पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए पहली चीज़ उनको पकड़े रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, रादर काउंटर प्रोडक्टिव है। दूसरी बात, अगर आप उस थॉट से भी कुश्ती कर रहे हैं, फंसे तो आप उसी में है ना, चाहे उसे पसंद कर रहे हैं चाहे उसे धक्का मारना चाहते हैं, फंसे तो उसी में। तो अगर हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उस थॉट को छोड़ देना है, पर सिर्फ छोड़ देने से बात नहीं बनती, क्योंकि माइंड जो है उसको कोई ना कोई एंकर चाहिए हर समय। तो उसको नए किसी चीज में हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है। इंटेंशन थॉट, थॉट इमोशन, इमोशन एक्शन, एक्शन मेमोरीज, मेमोरीज पर्सनालिटी, ये एक क्रम है।
और इंटेंशन जो आप ये बात कर रहे हैं ये हमें अभी तक कभी सुनानी है, प्रैक्टिकली हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत नई बात है। आप इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा और संक्षेप में बता सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो शायद वही है, अगर वहीं पर चेंजेस आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरीज जो लास्ट स्टेप है वो भी बेटर हो जाएगा।
देखिए, इंटेंशन का मतलब ये है कि मैं मान लीजिए किसी चीज़ से बहुत दुखी हूँ और वो दुख मेरे साथ चल रहा है और मुझे अब लगता है कि ये बहुत हो गया, मुझे अब इसे बदलना है, तो वो इंटेंशन है मेरी। अब कैसे बदलना है, उसके लिए मुझे क्या विचार लाने की ज़रूरत है या क्या विचार मुझे खुश रख सकते हैं, वो थॉट्स हैं। लेकिन उससे पहले उस जगह पर जाना है, ये मेरी इंटेंशन होनी ज़रूरी है। हम ज़्यादातर बाहरी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि क्योंकि वो हो रही है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे कुछ गलत कहा, मुझे गुस्सा आया, उसके साथ में एक इमोशन आई, उस इमोशन से मेरे कई तरह के नेगेटिव थॉट्स हुए, तो हम उस क्रम में चलते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं आना है, पहले ये इंटेंशन हुई, अब मैं तरीके ढूंढूंगा उस तरह से विचारों को लाने के कि मुझे गुस्सा ना आए, और फिर नेक्स्ट स्टेज होगी कि जब मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मैं अपने अंदर शांत महसूस करूँगा। एक्चुअली जो आप प्रोग्राम शुरू करती हैं वर्ड से, ओम शांति, ओम शांति is a beautiful example of an intention.
Okay.
I, the peaceful soul.
ये ओम शांति का मतलब है?
ये ओम शांति का मतलब।
अच्छा, okay.
और वो peaceful soul, आप a peaceful soul के साथ peaceful माहौल में इंटरेक्ट कर रहे हैं।
वाओ, ये तो बहुत ही अद्भुत बात आज आपने बताई है। ओम शांति का मतलब इस तरीके से होता है?
इस तरीके से लेना चाहिए।
Okay.
क्योंकि वहां पे हम फिजिकल तो कोई बात कर ही नहीं रहे।
बिल्कुल।
हम ये बात कर रहे हैं कि मेरी ये स्थिति है, मैंने अपने को भी डिक्लेयर किया, आपको भी डिक्लेयर किया, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी ये स्थिति है एंड आई होप कि आपकी भी वो एक स्थिति होगी, ताकि हम उसी आधार पर अपनी स्थितियों में आदान प्रदान कर सकें। तो अगर मेरी इंटेंशन है कि मुझे शांति के वातावरण में आपसे बात करनी है, तो मुझे नकारात्मक थॉट नहीं आएंगे, पर हम आमतौर पर यहाँ से कह के और फिर भूल जाते हैं। तो अगर हमारी इंटेंशन ये है कि मुझे अब नए रूप से जीवन को जीना है, जिस जीवन में इन्वेस्टमेंट कम और आउटपुट ज़्यादा, बिकॉज वॉट वी ऑल्सो रियलाइज इज कि अगर मैं सकारात्मक रूप से सोच रहा हूँ, देखिए माइंड जो है हमेशा सोचता रहता है, क्योंकि माइंड को अगर हम डायरेक्शन नहीं देते तो वो अपने आप इधर उधर का सोचता है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन देते हैं तो वो जिस रूप में हम सोचना चाहते हैं वो सोच पाता है। थिंकिंग के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। हमारी थिंकिंग से हमारी ब्रेन की वेव्स बनती हैं, जिनको हम ईईजी पैटर्न्स बोलते हैं। ईईजी इलेक्ट्रो एनकेफलोग्राम, जैसे दिल की ईसीजी होती है तो पता लग जाता है कि उसकी कैसे काम चल रहा है, धड़कन कैसी है, तो ब्रेन की भी उसी तरह से होती है। अगर हम बहुत काम एटमॉस्फेयर में सकारात्मक सोच जी रहे हैं तो उसकी जो पैटर्न है उसको अल्फा या थीटा कहा जाता है, और अगर बहुत स्लो हो जाती है तो उसको डेल्टा कहा जाता है। मेडिटेशन में इंसिडेंटली हम डेल्टा, थीटा और थोड़े से अल्फा वेव बनाते हैं, तो ये अच्छी काम स्थिति है, कंट्रोल स्थिति है, सकारात्मक स्थिति है। हम जैसे जैसे टेंस होने लगते हैं तो वो स्पीड जो है थॉट्स की बढ़ने के साथ साथ ईजी का पैटर्न भी बदलना शुरू हो जाता है। तो एक ही मिनट में ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है
और एफिशिएंसी भी।
कुछ समय के बाद अब वो एफिशिएंसी कम इसलिए होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसको जाना था अब वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है।
करेक्ट।
तो अगर हम अपनी स्थिति को सकारात्मक बनाते हैं और ब्रेन वेव्स अच्छी चलती हैं, हमारी स्थिति बढ़िया रहती है, हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं और उस एफिशिएंट स्टेट से हमारे संबंध जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कम से कम अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैंने गुस्सा नहीं करना आपके साथ, या मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहना क्योंकि मुझे कष्ट होता, तो मैंने अपने आप को कष्ट से बचाने के लिए ये सब किया। दूसरे वाले को भी मैसेज मिला, नहीं भी मिला, तब भी हमारी स्थिति कम से कम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी होगी। जब ये होता है तो पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती, और जब पॉजिटिव मेमोरीज एक व्यक्ति के साथ क्रिएट होती हैं तो वही फिर फ्यूचर की एंटिसिपेटरी मेमोरीज बन जाती है। आज मेरा आपसे रिलेशनशिप अच्छा है, अगली बार मुझे आपसे मिलना अच्छा लगेगा, आई एंटिसिपेट पॉजिटिविटी। और एक बार बीच में प्रश्न आया था कि हम जब लोगों से मिलते हैं और ख़राब एक्सपीरियंस रहा तो हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ खराब करेंगे और हम विड्रॉ होने शुरू हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो हम अगर इसी तरह से एक के बाद एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स क्रिएट करते जाएंगे
जी,
तो वो पॉजिटिव मेमोरीज भी क्रिएट करेगा, प्लस मेरा सम्मान अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं हर सिचुएशन में रिलेशनशिप्स को खूबसूरती से क्रिएट कर पा रहा हूँ या उन्हें सही डायरेक्शन दे पा रहा हूँ। जितनी बार, और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बात बचपन से शुरू होती है, जब बचपन में बच्चे को बार बार डांटा जाता और उसे कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वही चीज़ उसके मन पे चलती और फिर उसी चीज़ को सोच सोच के वो उसे एक सच्चाई के रूप में लाना शुरू कर सकता
है। करेक्ट।
और इसीलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को जो सही है वो बताया तो ज़रूर जाए, लेकिन जिस ढंग से बताया गया है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके सम्मान में कमी ना आनी चाहिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वही बचपन की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होके नेगेटिव मेमोरीज और नेगेटिव पर्सनैलिटी बनती है। तो अगर वहाँ पे हम अपने संबंधों को इस रूप में देख के कि ये मेरे लिए हर बार एक मौका है अपने आप को सही रूप से व्यक्त करने का, प्लस अपनी मेमोरीज को ठीक करने का, अगर आप कोई मैकेनिक को लेके आएंगे कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, और इतने अच्छे कंप्यूटर के लिए तो शायद कितना पैसा लेगा।
करेक्ट।
और हमारे अंदर खुद ही वो मैकेनिज्म है, हम खुद ही चाहें तो अपनी मेमोरीज को थोड़ा सा सकारात्मक डायरेक्शन देके उनको ठीक कर सकते हैं। और मेमोरीज को ठीक करने का और फ्यूचर में बेटर मेमोरीज क्रिएट करने का सबसे अच्छा साधन है सकारात्मक रिश्ते।
बहुत अच्छा। आज हमारे पास कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जरूर।
एक मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, खुश है, लेकिन वो ऐसे दुखी है कि अगले साल वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, तो इसके बारे में मुंझता रहता है, तो उसका क्या सोल्यूशन?
माता पिता अपने बच्चों को, सभी बच्चों को समान रूप से संस्कार और उनका पालन पोषण करती है, किंतु वही बच्चे में, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा संस्कारी होता है और दूसरा बच्चा अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनता है, ऐसा क्यों? फिर दुनिया वाले कहते हैं कि माँ बाप ने इसका पालन पोषण, उसे संस्कार अच्छे नहीं दिए, ये माँ बाप को ही सुनना पड़ता है।
डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगले साल चलेगा या नहीं चलेगा, इस भय के चक्कर में वो मूंझते रहते हैं।
कल शाम को आप 7 बजे कितने बजे कहीं होंगी, कहाँ होंगी पता आपको?
नहीं।
8 से 6 दिन बाद हम क्या खाना खाएंगे पता है हमको?
नहीं।
8 से 4 दिन बाद हम क्या कपड़े डालेंगे पता है?
पर मैं प्लान तो कर सकती हूँ ना उस चीज़ को।
आप प्लान कर सकती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कभी। और ये हम कई अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि हमारे बेस्ट इंटेंशंस होने के बावजूद एंड इंसिडेंटली ये जो तीनों चीज़ें कि आप कहाँ होंगे, क्या कपड़े डालेंगे, क्या खाना खाएंगे, वो ऑलमोस्ट एंटायरली अगर आप चाहें तो आपके अपने हाथ में।
करेक्ट।
लेकिन हम कई बार लोगों को इनक्रेज करते हैं कि अच्छा आज एक आंसर लिख दो, उसके बाद उसको साइड पर रख देना, 2 हफ्ते बाद देखना कि क्या वो हुआ, एंड वी फाइंड कि नहीं हुआ। कारण ये है कि बहुत सारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी हैं, और आज जो हमारी डिसीजंस हैं वो कल परसों चौथ बदलती रहती हैं। आज से 1 साल बाद इनका बिजनेस कैसा चलेगा नहीं पता, लेकिन अगर उसके बारे में सोच के इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे तो उसका अच्छा चलने के चांसेस ज़्यादा
हैं। साथ ही साथ वो जब फ्यूचर देखते हैं तो फियर इसीलिए आता है क्योंकि वो शायद नेगेटिव सोच रहे हैं कि शायद नेगेटिव, शायद नहीं चले मेरा, तभी तो फियर आता है। अगर वो 1 साल बाद को अगर इस तरीके से लें कि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, तो ऑटोमेटिकली फियर तो आएगा ही नहीं।
देखिए, या तो ये कि अच्छा चलेगा, या ये कि मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट है उन सर्कमस्टांसिस में वो करूँगा।
ओके।
इसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल है। जब हम अच्छे या बुरे के चक्कर में फंस जाते हैं तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना शुरू कर देते हैं।
करेक्ट।
और अभी वो इवेंट हुआ नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोच चुके हैं कि हम उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी मिस कर जाते हैं।
करेक्ट।
इफ़ यू आर बीइंग इन द प्रेजेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो अब में जो शक्ति है उसको पूरी आप निचोड़ सकते हैं। और अगर आप अब के साथ साथ फ्यूचर में भी फंसे हैं तो अब में उतना अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम जब बात कर रहे हैं और मैं ये सोचूं कि आपके अगले एपिसोड के 4th क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर देना है तो अभी नहीं कर पाऊंगा।
True।
तो इसीलिए ट्रिक ये है कि अभी मेरे में जो सक्षमता है और जो बाहरी सर्कमस्टांसेस हैं उनको मैं कैसे बेस्ट कर पाऊँ। अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आए भी तो ये समझूं कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया अंडर द सर्कमस्टांसेस, पूरी एनर्जी के साथ दिया, चांसेस आर इट विल बी गुड। और अगर नहीं होगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा और उसको आपने ठीक कैसे करना है। या अगर सर्कमस्टांसेस पूरी दुनिया के साथ खराब हैं, अगर सब जगह सूखा है तो उस घर में भी सूखा होगा, लेकिन उस सूखे के साथ डील कैसे कर सकें उसमें आपकी सक्षमता ज़्यादा होगी अगर आपने अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया।
करेक्ट।
अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा पास्ट में, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इतना फंसे रहते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका हम पूरा सही फ़ायदा उठा नहीं पाते।
सो ट्रू। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि दो बच्चों को एक ही तरह की परवरिश मिलती है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के संस्कार उतने अच्छे नहीं होते जितने कि दूसरे के होते हैं, और ऐसे में बाहर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि आपके संस्कार अच्छे नहीं दिए आपने, इस वजह से आपका बच्चा सही नहीं है। ये किस हद तक सही है, और अगर गलत है तो इस चीज़ का रियल कारण क्या है?
देखिए, पहली चीज़ तो जो हम कई बार बच्चों को सोचते हैं कि वो एक मिट्टी का ढेला है, उसको हम जैसे चाहें उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, घड़ा बना लें, सुराही बना लें, स्कल्पचर बना लें। हर बच्चा अपने साथ अपनी जेनेटिक मेकअप, अपनी पर्सनैलिटी और अपने संस्कार लेके आता
है। ओके।
उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको उभार सकते हैं, लेकिन अगर ये हम सोचें कि हम पूरी तरह से उसको अपने हिसाब से चला पाएंगे, अपनी वैल्यूज़ दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्लस जब बच्चा 3-3.5 साल का होता है तो वो स्कूल के अंदर भी जाता है, दूसरे बच्चों से भी मिलता है, एंड ये भी देखा गया है कि जब दो बच्चे अलग अलग समय पर एक फैमिली में पैदा होते हैं
जी।
तो उस समय फैमिली के सर्कमस्टांसेस भी थोड़े से बदले होते हैं।
करेक्ट।
हो सकता है कि माँ बाप के बीच में एक समय में झगड़ा चल रहा हो, दूसरे समय में नहीं चल रहा, या उस समय पैसा कम था दूसरी बार नहीं था, या जिस स्कूल में पहले को डाला दूसरे को नहीं डाला, तो ये सारे चेंजेस भी हो सकते हैं।
करेक्ट।
पेरेंट्स को अपने आप को बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना चाहिए, वो सिर्फ उसको गाइड करने के लिए हैं, वो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए हैं, वो सिर्फ दुनिया को उसके लिए इंटरप्रेट करने के लिए, जहाँ उन्हें लगता है। और आमतौर पे परवरिश में ये देखा जाता है कि अगर एक कोई चीज़ होती है जिसे वो अच्छा नहीं समझते तो वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। और बच्चे को ख़ास तौर पे अगर आप कोई चीज़ 10 बार बोलोगे तो उसको लगेगा कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसके बारे में वो ज़्यादा चलता है।
करेक्ट।
तो तरीका यह है कि जो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दें। हम आमतौर पर नेगेटिव के बारे में इतनी बात करते रहते हैं कि पॉजिटिव को भूल जाते हैं। प्लस कई बार ये भी देखने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हमारे आचरण में कोई ऐसा फ़र्क तो नहीं आ गया जिसको देख के बच्चा वो कर रहा है।
Okay.
और वहाँ पे दो बच्चों में भी फर्क आ सकता है,
क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे ना उस सिचुएशन को,
अलग अलग इंटरप्रेट भी करेंगे और शायद अलग अलग माहौल भी उस समय होगा
जी।
तो हम सोचते हैं कि हम वही थे जो आज से 4 साल पहले थे जब पहला बच्चा पैदा हुआ, शायद हम बदल गए, शायद हम उसको वो संस्कार नहीं दे पा रहे जो पहले को दिए थे।
Correct.
तो उस चीज़ को चेक करना भी ज़रूरी है। बट प्लीज़ ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए चाहता तो अच्छा है, लेकिन बच्चा सिर्फ वही चीज़ें लेगा और वही बड़ा होके बनेगा, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ उसको मोल्ड कर सकते हैं टू अ पॉइंट कि उसमें सही और गलत को समझ पाने की और सही को कर पाने की क्षमता बढ़ जाए, और उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं उसके पॉजिटिव बिहेवियर को धीरे 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 उभार कर, और जो नेगेटिव चीज़ है उसको इशारे से कम करके।
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम अपने अंदर में जो पुरानी मेमोरीज हैं उन्हें हमेशा पकड़ कर रखने की जो ये आदत है, इसे कहीं ना कहीं छोड़ने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ लेट गो अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फ्यूचर मेमोरीज हैं वो शायद और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक यू।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमारे जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं हम खुद ही क्रिएट करते हैं। हाँ, उनके लिए आपको सबसे पहले तो पुरानी फाइलों को डिलीट करने की ज़रूरत है। उनसे सीखिए ज़रूर, लेकिन उन्हें पकड़ कर मत रखिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सदा पकड़ कर रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो आगे के फ्यूचर मेमरीज़ है उन पर भी उनका प्रभाव पड़ने लगेगा, और फिर आप खुशी को कहीं ना कहीं खो देंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।